आप इनको लेके पीछे की तरफ बैठ जाओ, है ना, बच्चे को देखो। सो भक्ति के, भक्ति 9 तरह से की जा सकती है और इसकी सूचना हमें प्राप्त होती है कहाँ पर? भागवतम के 7वें स्कंद में हमें प्राप्त होती है, जहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये 9 हैं। श्रवण मतलब जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो, हाँ, और श्रवण का मतलब आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे वो भी श्रवण में आएगा, है ना। सो कीर्तन है जैसे वक्ता लेक्चर देता है, प्रवचन देता है, आप लोग जप करते हो वो भी कीर्तन में आता है, आप लोग प्रचार के लिए जाएंगे या जो प्रचार के लिए जाते हैं वो भी कीर्तन है। फिर अर्चन है, भगवान के विग्रह की पूजा करना, अर्चनम वंदनम, वंदनम का मतलब है भगवान को सुंदर प्रार्थनाएं सुनाना। सो हमारे वैष्णव आचार्यों ने अनेक प्रार्थनाएं लिखी हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखी हैं। सो एक पुस्तक मिलती है इस्कॉन में, जो जिसमें वैष्णव गीत के नाम से वो पुस्तक है, नीले रंग का कवर है उसका। सो आप सबको खरीदना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। सो ज़्यादातर उसमें गीत बंगाली में है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में, और उसका अनुवाद भी दे रखा है। आप सोचो कि बंगाली हमें समझ नहीं आएगी, हाँ, ये पुस्तक है ना। सो आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही सरल भजन है इसके अंदर। सो कोई सरल ढूंढता हूँ, आप बोलो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे भजन है, यशोमती नंदन ब्रज वर नागर गोकुल रंजन काना, तो इसका अनुवाद भी दे रखा है ना, कि कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं, ब्रज भूमि के दिव्य प्रेमी हैं और गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले काना है ना। गोपी परान धन मदन मनोहर काल या दमन विधाना, कि वो गोपियों के प्राण धन हैं और कामदेव का भी मन हरने वाले हैं और कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। सो ये पुस्तक आप सबको खरीदना चाहिए। तो ये वंदना है कि हम भगवान को अच्छा लगता है जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा लिखे गए जो भजन है, जो प्रार्थनाएं हैं, हम भगवान को सुनाते हैं। भगवान को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हम भक्तिविनोद ठाकुर जैसे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित जो हम प्रार्थनाएं, हाँ, और भजन जब हम भगवान को सुनाएंगे तो भगवान को भक्तिविनोद ठाकुर का स्मरण होगा, और जब भगवान को भक्तिविनोद ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का स्मरण होगा तो भगवान बहुत खुश होंगे। और भगवान सिर्फ भक्तिविनोद ठाकुर का स्मरण करके खुश नहीं होंगे, भगवान आपसे भी खुश होंगे कि आपने भगवान को भक्तिविनोद ठाकुर के लिखे हुए भजन सुनाए। तो भगवान को भी प्रसन्नता होगी और आपको भी सुख मिलेगा, और इसी को कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, कि हम अपने इंद्रियों से, अपनी जीवा वाणी, अपने समस्त हाथ पैर नाक कान इत्यादि से हम सभी इंद्रियों को ऋषिकेश, जो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएंगे तो उसे भक्ति कहते हैं। सो हमने बात की श्रवण की, फिर हमने बात की कीर्तन की, फिर हमने बात की अर्चना की, फिर वंदनम की, फिर है दास्यम कि भगवान के दास के रूप में सेवा करना, है ना। तो जब कोई नया भक्त जुड़ता है इस्कॉन के साथ तो वो श्रवण कीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की वंदना करता है, और जो श्रीमद् भागवतम और दूसरे ग्रंथों में भगवान को प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वो प्रार्थनाएं भगवान को सुनाते हैं, तो वो व्यक्ति फिर दीक्षा के योग्य हो जाता है। सो जैसे अब 18 या 19 तारीख को दीक्षा है, 18 की डेट अभी तक ये पता नहीं चेंज नहीं हो जाए, तो आप सब आपको पावन जनार्दन प्रभु बता देंगे किस दिन यहाँ पर दीक्षा समारोह होगा। सैकड़ों भक्तों को दीक्षा दी जाएगी, सारे काम धंधे छोड़ के आप सबको वो दीक्षा समारोह में भाग लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे जो भक्त हैं वो गुरु की शरण लेते हैं और क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार जो है गुरु शिष्य को स्वीकार करते हैं और उसको एक आध्यात्मिक नाम देते हैं। सो आपको ये सूचना दे दी जाएगी, तो आप सबका कर्तव्य है कि आप उस दिन सारे काम धंधे एक दिन के लिए छोड़ दो, कुछ आफत नहीं आएगी, कोई आसमान नहीं फटेगा, और आप सब लोगों को आके वहाँ पर देखना चाहिए और अपने साथ में धन भी लाना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के बाद जितने भी लोगों को दीक्षा मिलती है वो लोग का कर्तव्य होता है, शिष्य का कर्तव्य है गुरु के लिए भिक्षा मांगना। तो दीक्षा के बाद जितने भी वहाँ पे दीक्षा को मिली होती है वो सब अपने झोले फैला के जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं सबसे भिक्षा मांगते हैं। तो आप अपने साथ में पैसा लेके जाओ, जिससे जो भी वहाँ पर, चाहे आप जानते हो उस भक्त को या नहीं जानते, फर्क नहीं पड़ता। आप किसी जान पहचान वाले भिखारी को भीख थोड़ना देते हो, इसको जानता हूँ इसको दूंगा और इसको नहीं जानता उसको नहीं दूंगा, है ना। हम दया के लिए जो भी अगर हमारे पास हो, क्षमता हो, तो हम बिना किसी पहचान के भी हम भिक्षा देते हैं। तो जितने भी वहाँ पर लोग हों, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप वहाँ पर भिक्षा दें उन लोगों को, बहुत ही पुण्य का काम है ये, और वो सारे भिक्षा इकट्ठी करके अपने गुरु के चरण में वो अर्पण करते हैं, है ना। सो आप सब देखिए, बहुत ही बिल्कुल अलग एक आपको लगेगा सत्ययुग में पहुँच गए हो। मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, जब तक आप देखोगे नहीं अपनी आँख से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आप उसको देखोगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि हमने भी जो है गुरु की शरण लेनी है और दीक्षा हमने भी स्वीकार करनी है। सो जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शिष्य को एक दास के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको समझाते हैं कि आपको किस प्रकार भगवान की सेवा में जुड़ना है, तो इसको बोलते हैं दास्य। और जब आप दास भाव से सेवा करोगे तो भगवान में आपका अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, और अलग 5 मुख्य रस होते हैं जिनमें भगवान की सेवा की जा सकती है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। सो शांत रस जो है, बच्चों को प्लीज चुप कराइए ना। सो जो शांत रस है, जैसे नदी, तालाब, वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि ये सब शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। दास्य रस में जो जैसे हमने अभी बात किया कि दास्य रस में भगवान की सेवा की जा सकती है, भगवान के चरण दबाना तो भगवान के दास्य रस में सेवा है। और फिर साख्य रस में भगवान की सेवा है कि भगवान के साथ खेलना कूदना, भगवान को अपने कंधे पर बिठाना और खुद भगवान के कंधे पर बैठना। और साख्य रस में तो लड़ाई भी हो जाती है, जैसे दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो जो भक्त साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं और भगवान से लड़ बैठते हैं, तो भागवतम में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि एक बार कृष्ण और बलराम खेल रहे थे बच्चों के साथ, सो यशोदा माई ने आवाज़ मारी, आओ फटाफट आओ, बहुत टाइम हो गया, आके भोजन ग्रहण करो। तो नहीं नहीं मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, आते हो या नंद महाराज को भेजो। तो डर के मारे जाने लगे कृष्ण और बलराम। तो जो उनके सारे सखा थे सुदामा इत्यादि, उन्होंने बोला खबरदार अगर गए तो दोबारा नहीं खिलाएंगे। तो भगवान कृष्ण डर गए, तो उन्होंने कहा दोबारा नहीं खिलाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वापस बारी पूरी करके गए। और हम देखते हैं कि भागवतम के दशम स्कंद में हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण दूसरे सखाओं को अपनी पीठ पे बिठाकर घोड़ी बनाकर उनको पिट्ठू बन के लेके जाते हैं, और बलराम जी भी जो जीतने वाली पार्टी है उनको अपनी पीठ पे बिठा के पिट्ठू बनाकर उनको पूरे जंगल का चक्कर कटवाते हैं। तो साख्य रस में इतनी ताकत आ जाती है कि आप भगवान को भी हरा सकते, और किसी भी धर्म में आपको ये सुनने को मिल ही नहीं सकता कि भगवान को हराया जा सकता है। लेकिन भक्ति की बल पर, भक्ति के बल पर हम भगवान इतने वशीभूत हो जाते हैं भक्ति से कि भगवान को अपने भक्तों से हारने में भी अच्छा लगता है। तो दास्यम साख्यम क्या था, क्या 9 है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु स्मरण हमने बाद में किया, विष्णु भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण करना है ना। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हम उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हम टीवी चला के अखबार पढ़ते हुए हम भगवान का भजन करें, वो अच्छी बात नहीं है। सो जब हम अच्छे से भगवान का जप करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो हमें स्वतः भगवान का नाम स्मरण आना शुरू हो जाता है, हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, विष्णु स्मरण हो जाता है। सो श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, हाँ, और फिर आत्मनिवेदनम कि अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। सो ये सर्वोच्च स्थिति है, और ये सर्वोच्च स्थिति जो है हमें गोपियों के व्यवहार में देखने को मिलती है कि जब भी गोपियाँ जो है, गोपियाँ भगवान कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, लेकिन जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, सो गोपियों के लिए जीवन धारण करना बहुत ही कठिन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। जो बाद में आते हैं उनको पीछे ही बैठना चाहिए, आगे सो जो पीछे बैठे हैं पहले आके उनको आगे बैठना चाहिए, उल्टा पूरा संसार एकदम उल्टा चल रहा है। आप लोगों को पीछे बैठने का क्या पॉइंट है, आगे बैठ जाओ, हम कोई आपसे पैसे थोड़ा ना, आपकी चेन थोड़ा ना खींचेंगे डालेंगे। सो आगे बैठना चाहिए ताकि जो बाद में आ रहे हैं ठीक है वो आराम से पीछे बैठ सकें। और एक और सदाचार का ध्यान रखना चाहिए, अगर प्रवचन चल रहा है तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कृष्ण कथा में व्यवधान आता है ना, ये सदाचार है। सो अगर आप लेट आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आए अच्छी बात है, लेकिन आप आगे आकर बैठने से और घंटी बजा के सबको बताने से कि देखो मैं आ गया, उसका फायदा नहीं है। आप आओ चुपचाप आके बैठ जाओ और कृष्ण कथा सुनो। सो हम बात कर रहे थे कि जब भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियों के लिए जीवन धारण करना मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी आत्महत्या नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि अगर भगवान कृष्ण अगर आ गए वापस वृंदावन और उन्होंने मेरे बारे में पूछा और मैं उनको नहीं दिखाई दिया, जो सखा हैं वो बोलते थे अगर मैं उनको नहीं दिखा तो उनको दुख होगा, कृष्ण को तो उनको दुख नहीं हो, इस कारण से इतनी विरह भगवान से होने के बावजूद भी वो अपना शरीर की सुरक्षा करते रहे। तो ये ब्रजवासियों का जो भाव है, सर्वोच्च भाव है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना है ना। सो आत्मनिवेदन में जो चैतन्य महाप्रभु ने आत्मनिवेदन की परिभाषा दी है कि आत्मनिवेदन जब व्यक्ति अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर देता है तो वे बोलता है कि हे भगवान आप मेरे प्राणनाथ हैं, अगर आप मुझे आलिंगन नहीं करेंगे, अगर आप मुझे पैर से ठोकर भी मारेंगे तो भी आप मेरे प्राणों के नाथ ही रहेंगे। सो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से, अपने जीवन चरित्र से इसको करके दिखाया है ना। सो आप सबको चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का क्या मनोभाव था, कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, कैसे उन्होंने पूरे संसार को कृष्ण भावना से, कृष्ण प्रेम से एकदम पूरे संसार को डुबा दिया उन्होंने कृष्ण प्रेम। सो आप अगर पूरा चैतन्य चरितामृत नहीं भी पढ़ पाओ तो भी कई भक्तों ने, और श्रील प्रभुपाद की भी एक संक्षिप्त जीवनी है चैतन्य महाप्रभु के लिए, सो आप उसको भी पढ़ सकते हो ताकि आपको ये जानकारी हो कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो, किन के निर्देश में आप कृष्ण भक्ति करने के प्रयास कर रहे हो, है ना। सो एक भक्त का जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, यहाँ भी एक मॉनिटर बना देना चाहिए जो बच्चों को थोड़ा शांत रखे। तो जैसे मोबाइल को वाइब्रेशन पर डालते हैं, बच्चों को भी वाइब्रेशन पर डालने का सिस्टम होना चाहिए। सो जो नौ विधियां हैं ये नवदा भक्ति इसको कहा जाता है, इनमें से आप सारी विधियां या कुछ विधियां या एक भी विधि का पालन आप करें तो उससे भी आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने सुनकर श्रवण करके जीवन की सिद्धि प्राप्त की, और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके उनको श्रीमद् भागवतम सुना के जीवन की सिद्धि प्राप्त की। और पहले सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यास देवी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। सो हम ये देख सकते हैं और प्रभुपाद बता रहे हैं कि नवधा भक्ति में वैसे तो सारी विधियाँ श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो विधियाँ हैं वो श्रवण और कीर्तन की हैं। हम कुछ भी और विधि का पालन नहीं कर पाए अगर, लेकिन अगर हम श्रवण और कीर्तन की पूरी शरण लें हम, तो उससे भी हम जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रसंग हमें मिलता है रुक्मिणी जी के जीवन चरित्र में। छोटी सी बालिका थी जब रुक्मिणी जी, हाँ, और उनके पिता का क्या नाम था, हाँ, भीष्मक, हाँ, भीष्मक था उनके पिता का नाम। और उनके कितने भाई थे, सो उनके चार भाई थे रुक्मिणी जी के, उसमें से सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, और तीन भाई और भी थे। सो क्योंकि जो रुक्मिणी जी के पिता हैं वो बहुत ही महान भक्त थे भगवान के, इसलिए वहाँ पर अनेक संत महात्मा आया करते थे, और वो लोग जिसमें नारद जी भी शामिल थे। सो जो संत महात्मा आते थे वो भगवान कृष्ण के रूप और लीला की चर्चा करते थे, तो उसको सुनकर रुक्मिणी जी जो हैं उन्होंने उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। और सब लोग सहमत थे, उनके पूरे परिवार में, राज्य में हर व्यक्ति ये सोचता था कि रुक्मिणी जी के लिए जो सबसे योग्य वर है वो है भगवान कृष्ण। लेकिन एक व्यक्ति था जो कि ऐसा नहीं सोचता था, वो थे रुक्मिणी जी के सबसे बड़े भाई रुक्मी। तो वो भगवान से ईर्ष्या करता था और उसने रुक्मिणी जी का विवाह करने का निश्चय किया शिशुपाल से, है ना। तो शिशुपाल जो है वो चेदी के राजा का पुत्र था। सो जब और जो रुक्मिणी जी के पिता थे वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से हो, लेकिन क्योंकि सारी शक्ति रुक्मी के हाथ में थी तो उनको रुक्मी की इच्छा के सामने झुकना पड़ा। अब अगर आप रुक्मिणी जी का अगर आप देखें उनकी हालत, हाँ, कि उनका अपना भाई एक ऐसे व्यक्ति को उनका हाथ सौंपना चाहता था जो कि भगवान कृष्ण का विद्वेषी था, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला था। सो बिल्कुल बेबस थी वो, क्या कर सकते हैं, नहीं। सो उन्होंने उस लाचारी की स्थिति में उन्होंने भगवान की पूर्णतः शरण स्वीकार की, और उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ भगवान को एक चिट्ठी लिख के भेजी जिसमें उन्होंने गुहार लगाई कि आप मेरी रक्षा करें। सो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में, और आप सब लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आई होगी जिसमें कि आप लोग अपने आप को बहुत ही लाचार और बेबस महसूस किया होगा आपने, या आगे भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, और आप उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे द्रौपदी ने लड़ने की कोशिश की परिस्थितियों से, जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था, हाँ, तो द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाई, जितने भी अपने पांचों पतियों से उन्होंने बोला कि आप मेरी लज्जा की रक्षा करो, हाँ। और फिर जब पांचों पांडवों ने सर झुका लिया तो उन्होंने गुरु, जो गुरु थे वहाँ बैठे हुए द्रोणाचार्य इत्यादि, उनसे गुहार लगाई, कुछ सुनवाई नहीं हुई। धृतराष्ट्र को बोला, भीष्म पितामह को बोला, कुछ नहीं किया। और जब वो जबरदस्ती चीरहरण कर रहा था, सो उस समय उन्होंने अपना भी पूरा जोर लगाया बचने के लिए, लेकिन जब उन्होंने आखिर में हार कर भगवान की पूर्णतः शरण स्वीकार की तो भगवान तुरंत वहाँ पे प्रकट हुए और उनकी लज्जा की रक्षा की। सो जिस प्रकार द्रौपदी जी हैं, जिस प्रकार रुक्मिणी जी हैं, उन्होंने भगवान की पूर्णतः शरण स्वीकार करके अभय प्राप्त किया, भगवान की कृपा प्राप्त की, भगवान की सुरक्षा प्राप्त की। और जिस प्रकार हम देखते हैं गजराज, जब मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़कर उसको पानी में खींच के लेके जा रहा था, तो पहले गजराज लड़ता रहा नहीं, उसने बहुत युद्ध किया और हजारों साल तक वो युद्ध चला, लेकिन हार के जब वो थक गया, उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई और उसको अपना अंत सामने दिखाई दे रहा था, तो गजराज ने उसी तालाब में कमल का फूल तोड़ के और अपनी सूंड से और भगवान को ऑफर किया और भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा करें, और भगवान ने तुरंत जो है गजराज की रक्षा की। सो हम लोग भी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहाँ पर कि बिल्कुल अंधकार ही दिखाई दे रहा हो, सामने भविष्य में कुछ आशा की किरण नहीं दिखाई दे, तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, वो एक अवसर है जब हम पूरी तरह से भगवान की शरण स्वीकार कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो हमें उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति से, मन से, तन मन और धन से हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। तो जिस प्रकार रुक्मिणी जी के आवेदन पर भगवान कृष्ण आए और रुक्मिणी जी की रक्षा की उन्होंने, और जिस प्रकार उन्होंने गजराज और द्रौपदी की रक्षा की, और ऐसे लाखों उदाहरण हैं हाँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं नामे भक्ता प्रणश्यति हाँ, और भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन आप घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों विनाश नहीं होता? क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हाँ। भगवान के जो चक्र है हाँ, तो भगवान ने चक्र आभूषण के रूप में नहीं धारण किया हुआ, वो चक्र जो है वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने धारण किया है। जैसे हमें पता चलता है कि जब दुर्वासा मुनि के श्राप से हाँ एक राक्षस उत्पन्न हुआ और वो महाराज अम्बरीश को मारने के लिए भागा, तो भगवान कृष्ण ने अपना चक्र भेजकर अम्बरीश महाराज की रक्षा की और दुर्वासा मुनि को सबक सिखाया। सो कोई भी परिस्थिति हो हाँ, हमें हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। आप में से हर व्यक्ति एक विशिष्ट परिस्थिति में जी रहा है, एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे अगर 5 बंदे 10 बंदे रह रहे हैं, उनमें भी सबकी परिस्थिति और मानसिक चेतना सबकी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सुख और दुख का अनुभव कर रहा होता है। जैसे एक ही छत के नीचे पिता और पुत्र रह रहे हैं, तो पुत्र ने अगर कुछ गलती की तो पिता क्रोध का अनुभव कर रहा है और पुत्र डर का अनुभव कर रहा है नहीं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर घर में अलग परिस्थिति है, एक घर में भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिस्थिति रहती है, और वो परिस्थिति में हम क्यों हैं, वो परिस्थिति में हम इसलिए हैं क्योंकि उस परिस्थिति में जाने की हमारी इच्छा थी, हमने इच्छा की थी पूर्व जन्मों में कि हम इस प्रकार से इस परिस्थिति में हम भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने बहुत ही दयावश हम सब के लिए ऐसी विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न की, विशिष्ट परिस्थिति बनाई और हमें उस परिस्थिति में डाला ताकि हमारी जो पूर्व जन्मों की इच्छाएं हैं भोग की वो पूरी हो सके। हमें अभी याद नहीं है, आप बोलोगे कि हमने थोड़े ना सोचा होगा कि हम बुद्ध विहार में जन्म लें, हमें तो ग्रीन पार्क में ईस्ट ऑफ कैलाश में जन्म लेना चाहिए या अमेरिका में हमें जन्म लेना चाहिए था। तो अगर आप आज ऐसी इच्छा करेंगे तो हो सकता है आपको आपके कर्मों के अनुसार वहाँ भी आपको जन्म लेने का मौका मिले, लेकिन अभी क्योंकि पूर्व जन्मों में आपकी यही इच्छा थी इसीलिए आप इस विशिष्ट परिस्थिति में आप अपना जीवन बिता रहे हैं। सो इस जिस भी परिस्थिति में आप हैं उसके लिए आप किसी को दोष मत दीजिए। हाँ, ये मत सोचिए कि ये उसके कारण मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। वो परिस्थिति आपकी अपने भाग्य की वजह से है, कोई अन्य व्यक्ति दोषी नहीं है और ना ही भगवान उसके लिए दोषी है, वो आपके अपनी इच्छाओं और कर्मों का फल है। तो अगर आप ये बात समझ लेंगे, ये बात आपकी समझ में आ गई तो तुरंत आपको शांति का, संतोष का अनुभव होगा और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो आप भगवान की शरण लेने का प्रयास करें। जिस प्रकार गजराज अपने बल पर मगरमच्छ के शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार कोई भी जीव अपनी शक्ति के आधार पर इस भौतिक जगत से, इन दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर उसको छुटकारा पाना है तो उनको गजराज, द्रौपदी जी, रुक्मिणी जी इत्यादि भक्तों का जो प्रसंग है उनसे सीख लेनी पड़ेगी, सबक लेना पड़ेगा कि जिस प्रकार उन्होंने शरण ली और अपने दुखों से मुक्ति पाई, उसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान की शरण लेने से हमारे समस्त भौतिक दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सो भगवान की शरण लेने का, श्रवण कीर्तन और सेवा में जुड़ने का अवसर मिलता है हमें अनेक प्रकार के भगवान के उत्सव मनाकर, जैसा हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो आप सबको प्रयास करना चाहिए कि जैसे अभी जन्माष्टमी गई, दो दिन पहले राधा अष्टमी थी, फिर बीच में प्रभुपाद का प्राकट्य दिवस आया, अभी दीक्षा समारोह होगा कुछ दिनों में। तो आप सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि आप सब बहुत ही उत्साह से इन उत्सवों में भाग लें। ऐसा मत सोचें कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। आप सब काम करते रहें, अगर आप भगवान के उत्सवों में भाग लेंगे तो उससे आपके धन में कमी नहीं होगी, आपके सुख में कमी नहीं होगी, आपका सुख और धन और बढ़ेगा, क्योंकि जो भी सुविधाएं आपके पास हैं वो सारी सुविधाएं भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रही है। अगर आप भगवान के उत्सवों में भाग लेंगे और भगवान को ये बताएंगे कि हम आपके उत्सवों में बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि आपका कभी कोई उत्सव आएगा, कुछ सेवा का अवसर आएगा, तो हम आपकी सेवा में जुड़ने के लिए बहुत ही बेताब हैं। तो जब भगवान आपके देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान आपको सुविधाएं देंगे या आपसे सुविधाएं लेंगे? भगवान आपको सुविधाएं देंगे ताकि आप भगवान की सेवा में और अच्छे से जुड़ सको, लेकिन अगर आप सोचोगे कि मंदिर नहीं जाने से मैं और अच्छे से मेहनत करके कुछ धन कमा लेता हूँ, तो आप मेहनत कर सकते हो लेकिन धन तो आपको भगवान की इच्छा से मिलेगा, अन्यथा धन नहीं मिल पाएगा। सो आप में से किसी को भी हरे कृष्णा, अरे यार उनको समझाओ, आपको ना अगर फोन सुनना है तो आप बाहर जाकर सुन सकते हो। आपने 100 लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, क्या फायदा हुआ आपको? चलो इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। सो जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो एक बार सोच लिया, चलो हमने मांगा होगा। जो बुरा हो रहा है वो तो हमने नहीं मांगा होगा, तो फिर वो हमें क्यों मिल रहा है? तो कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। सो आपको मिलता है आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन आपका उतना भाग्य होना चाहिए तो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इच्छा की और तुरंत पूरी हो जाएगी। आपको वो इच्छा के लिए, इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपको इतने पुण्य कर्म करने पड़ेंगे कि वो इच्छा की पूर्ति हो पाए। और उनको करते करते अगर आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो बिना आपकी इच्छा किए आपको पापों का फल भी भोगना पड़ेगा। ये चिकनगुनिया भी पापों का फल है, लोग बीमार पड़े हैं। तो ऐसा क्यों है कि परिवार में वो चिकनगुनिया के मच्छर ने एक को काटा दूसरे को नहीं काटा? उसका पाप थे, उसलिए एक को काट लिया दूसरे को छोड़ दिया, है ना। तो भागवतम में भी बोला है, भागवतम में भी वर्णन आया कि ऐसा कैसे है कि जंगल में आग लगती है अगर, तो कई बार देखा गया है आग एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे जाती है, बीच में एक पेड़ खड़ा होता है उसको आग नहीं लगती। आप बोलोगे कैसे हो गया? हो गया। भगवान के निरीक्षण में, भगवान की देखरेख में सारे कार्य हो रहे हैं, है ना। तो अगर हमें कोई भी दुख अगर भोगने को मिल रहा है तो वो हमारे अपने पाप कर्मों के कारण है। आप चाहे इच्छा करें चाहे नहीं करें, आपको भोगना ही पड़ेगा। और ब्रह्मा जी इसका, इसको स्वीकार कर रहे हैं भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, और जहाँ पर वो कह रहे हैं, भुंजान एव आत्म कृतम विपाकम, कि जो विपाकम जो मेरे अपने पाप थे, मेरे ही बुरे कर्म थे, भुंजान मैं भोग रहा हूँ, आत्म कृतम मैंने ही किए थे विपाकम पाप कर्म, और मैं ही उसको भोग रहा हूँ। किसी को दोष देने का क्या पॉइंट है, है ना। किसी को दोष देने का कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। सो प्रश्न है कि सन्यासी का मतलब क्या है। सो भगवान ने वर्णाश्रम का, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। वर्णाश्रम का मतलब है चार वर्ण और चार आश्रम। सो चार वर्ण जो हैं, चार वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो जो लोग भगवान की शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को भगवान की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, वो ब्राह्मण हैं। और जो लोग धर्म के अर्जन में लगे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वैश्य हैं। वैश्य का मतलब जो बिजनेस क्लास है, जो पैसा कमाने के कार्य में लगे हुए हैं। और क्षत्रिय हैं जो कि पूरे समाज की, देश की रक्षा करते हैं, जो राजा हैं। जैसे अब आज के राजा हिंदुस्तान में मोदी जी हैं, और मोदी क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना। और फिर शूद्र हैं, शूद्र हैं जो बाकी के तीन जो वर्ण हैं उनकी सेवा में लगा हुआ है। शूद्र होना कुछ बुराई नहीं है, स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अगर उसको सेवा करना अच्छा लगता है, दूसरों की सेवा में लगा है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि देखो हमें शूद्र बोल दिया, तो शूद्र बोलने में बुराई नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का ही हिस्सा है, है ना। तो चार वर्ण हैं, उसी प्रकार चार आश्रम भी हैं। तो ये जो चार वर्ण हैं, ये इनमें जो चार वर्णों में लोग हैं, ये चार आश्रमों में रह सकते हैं, चार आश्रमों में से किसी एक आश्रम में रह सकते हैं। जैसे क्या कुछ कह रहे हैं, ओ फोन सुन रहे हो क्या, ओ माय गॉड, अच्छा। सो जो चार आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कर्तव्य है कि वो 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और शिक्षा ग्रहण करे, और फिर अगर उसकी विवाह करने की इच्छा हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी को विवाह करना चाहिए, जिसकी इच्छा नहीं है विवाह करने की वो आजीवन ब्रह्मचारी भी रह सकता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है, जो विवाह करना चाहता है, तो 25 वर्ष की आयु में उसको अनुमति दी जाती है कि वो विवाह करे, और 25 वर्ष तक वो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। तो 50 वर्ष की आयु में ऐसा शास्त्रों का विधान है कि उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाना चाहिए। यह नहीं कि जब तक सांस है पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहे। 50 वर्ष की आयु में पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उसे तीर्थ यात्रा इत्यादि करनी चाहिए। तीर्थ यात्राएं करने से कम समय घर में बिताने से उसकी घर में जो मोह है, जो घर में आसक्ति है, वो घटेगी, और जब उसकी आसक्ति खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो ये वानप्रस्थ आश्रम के दौरान जो व्यक्ति है अपनी पत्नी को अपने साथ रख सकता है, इकट्ठे मिलके तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, और जब उसकी आसक्ति धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो अपनी पत्नी को घर भेजकर अपने बच्चों के पास फिर उसे सन्यास ले लेना चाहिए। सन्यास लेने का मतलब है पारिवारिक संबंधों को बिल्कुल ख़त्म कर देना, फिर वो अपने परिवार से वापस नहीं मिलता, विशेष रूप से पत्नी से, और अपना पूरा जीवन वो व्यक्ति भगवान के नाम के प्रचार इत्यादि में लगा देता है। जिस प्रकार चारों वर्णों में ब्राह्मण का जो वर्ण है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सोचने और समझने की शक्ति है, उसी प्रकार जो आश्रम है चार, कौन से आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चारों आश्रमों में सन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी सन्यासी हो जिसने सन्यास आश्रम ग्रहण किया तो उसको बहुत ही ज़्यादा आदर देना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेने के लिए आवश्यक है कि हम ये देखें कि उसने वैष्णव धर्म के अंदर ही सन्यास लिया हो। हम किसी मायावादी से अगर हम शिक्षा लेंगे तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हमें ऐसे व्यक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का आदर करना चाहिए जो भगवान का भक्त हो और भगवान कृष्ण की शिक्षा का प्रचार कर रहा हो। ठीक है, सन्यास लेने का मतलब है भौतिक सुखों की इच्छा नहीं रहती। हाँ, वो गाड़ियों में प्रश्न अच्छा है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी जो हैं वो गाड़ियों में, एयरप्लेन में, हवाई जहाज में यात्राएं करते हैं। तो जब सन्यास ले लिया तो उनको ये सुख नहीं लेने चाहिए, है ना। सो आप विशेषकर से इस कौन में अगर आप सन्यासियों को देखेंगे, अगर आप उनके साथ समय बिताएंगे, तो आप देखेंगे कि वो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं बहुत ही मुश्किल से, हाँ, और जब अपने कमरे में बैठते हैं तो पंखा भी नहीं चलाते, लेकिन वो सारी सुख सुविधाओं का प्रयोग करते हैं जिससे कि प्रचार में उनको सहायता मिले। तो वो गाड़ियों का प्रयोग करते हैं ताकि वो अलग अलग स्थानों पर जल्दी से पहुंच के और लोगों को भगवान की शिक्षा दें। हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, विभिन्न देशों में जाकर, विभिन्न शहरों में जाकर वो लोगों को भगवान के बारे में बताएं। अगर आप बोले कि आप तो सन्यासी हो तो आपको पैदल ही जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे पहुंच ही नहीं पाएगा, पैदल चलेगा। सो जैन धर्म वाले नहीं चल रहे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो पैदल, उनको चलने की आवश्यकता नहीं है, उनको बोलो हवाई जहाज में जाओ अगर कोई टिकट खरीद के दे दे तो। सुविधा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सुविधा में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस सुविधा से आसक्त हो जाते हो। आप किसी भी सुविधा को अगर भगवान की सेवा में प्रयोग करते हो, जैसे महाराज युधिष्ठिर ने किया, चक्रवर्ती सम्राट थे, नौकर चाकर रथ गाड़ियाँ उनके पास सब थे, लेकिन जैसे जनक महाराज हैं, हाँ, इतने बड़े राजा थे लेकिन आसक्ति नहीं थी किसी भी चीज़ से। सो बात ये नहीं है कि आप गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो, सवाल ये है कि आप गाड़ी में बिना वजह बैठ रहे हो क्या? अगर आप भगवान की सेवा के लिए गाड़ी हवाई जहाज और सभी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हो तो वो अच्छा है, अगर आप अपने सुख के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो तो गलत है। सो जो सन्यासी, दो तरह के वैराग्य होते हैं, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो बोलता है कि ये सब माया है, धन माया है, घर माया है, लोग माया है, ये शरीर माया है, इससे मुझे कुछ सरोकार नहीं है, ये गाड़ी बंगले मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, और अपने शरीर के बाल भी नोच लेते हैं, हाँ, तो उसको फल्गु वैराग्य कहा गया है। फल्गु वैराग्य का मतलब है बहुत अच्छा वैराग्य नहीं है, घटिया क्वालिटी का वैराग्य है, हाँ, क्यों? क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यद किन जगत त्याम जगत, ये समझना चाहिए कि हर वस्तु भगवान की है, तो ना, क्योंकि हर वस्तु भगवान की है तो ना तो आप उस वस्तु को भोग सकते हो और ना ही उसको त्याग सकते हो। जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उसको कैसे त्याग सकते हो? और जो वस्तु भगवान की है आप उसको भोग भी नहीं सकते। तो जो लोग सोचते हैं कि मैंने त्याग दिया, वो बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं, हाँ। लेकिन जो भोग रहे हैं वो भोगी हैं, लेकिन जो अच्छा सन्यासी है, जो वैष्णव सन्यासी है, वो ना तो भोगता है और ना ही त्याग करता है, वो वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देता है ना। क्यों? क्योंकि वो वस्तु भगवान की, ठीक है। सो आप बोलोगे एक मर्सिडीज गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी होती है, मेरे ख्याल सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी ही होती होगी, है ना, डीटीसी की तरह नहीं है। तो उस गाड़ी में आप बोलो कि एक जो ड्राइवर बैठा है चला रहा है, बहुत मजे ले रहा है, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना। उसी प्रकार से अगर कोई सन्यासी है, अगर गाड़ी में एक जगह से बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अन्यथा माया समझ के चीज़ों को त्यागोगे, उसको फल्गु वैराग्य घटिया वैराग्य कहा गया है, क्योंकि वो वस्तु आपकी थी ही नहीं, आपने उसको कैसे त्यागने की हिम्मत की, इसका मतलब आप उस वस्तु को अपनी समझ रहे थे, तो ये सोच में कमी के कारण ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो नंगे पैर जो तपती जमीन पर चल रहा है वो महान है, जो एसी गाड़ी में जा रहा है वो बेकार है, इससे बिल्कुल उल्टा है। सवाल मानसिकता का है, आप किस चेतना से आप सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, और किसी का प्रश्न होगा तो। अच्छा प्रश्न है कि जैसे हमने अभी बताया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, तो वो अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, खुद क्यों नहीं घोषणा कर देते ये बात। तो भगवान अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं घोषणा करने के लिए कि भगवान कई बार अपने वचन से पलट जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों के वचन से भगवान कभी नहीं पलटते। जैसे भगवान ने वचन दिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अस्त्र उठा लिया, रथ का पहिया उन्होंने उठा लिया। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए हाँ भगवान जो है अपने वचन को भी एक बार छोड़ देते हैं, उनको अपना वचन कम महत्वपूर्ण लगता है। कितने महान है भगवान ने कि अपने भक्त की रक्षा के लिए झूठा कहलाना स्वीकार कर लिया। देखो तुमने कहा था हथियार नहीं उठाओगे, लेकिन मेरा भक्त की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मुझे झूठा बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। तो कोई बोल सकता है कि देखो आप अगर आप बोलोगे कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा, आप इससे भी पलट सकते हो। तो इसलिए भगवान ने कहा देखो मैं अगर बोलूंगा तो शायद पलट जाऊं, लेकिन अगर मेरा भक्त अगर ये वचन दे देगा, अगर मेरा भक्त बोलेगा कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करेंगे, तो भगवान कभी उस वचन से नहीं पलटेंगे। तो उस वचन पे सीमेंट लगाने के लिए, उसको लोगों को और अधिक आश्वासन देने के लिए, गारंटी देने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम बोल दो, तुम जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ कोई अच्छी तो अच्छा हुआ आपने पूछा, औरों को भी सुनने को मिला, ठीक है। सो